मिन अजली सालिका, इस वजह से, इस वजह से, किस वजह से, ये जो ये वाकया है, कतबना आला बनी इसराइल, हमने लिख दिया बनी इसराइल पे। सो बनी इसराइल के लिए लिख दिया, क्या बाकियों के लिए नहीं है? बाकियों के लिए भी है, और बाकी भी लोग यही कानून उनके लिए, क्या अन्नाहू। लेकिन फिर बनी इसराइल का सिर्फ क्यों जिक्र आया? इसलिए कि पहले भी देखें, इस सूरत में बनी इसराइल की बात आ रही है, इसलिए। सेकेंडली, बनी इसराइल कत्लो गारत में इतने तेज थे, मैंने आपको बताया ना, ये तो अपने नबियों को कत्ल कर देते थे, एक एक दिन में कई 100 नबी कत्ल कर देते थे, इतना इनके लिए आसान था कत्ल करना। खास तौर पे उनके ऊपर बात की गई, लेकिन हम सबको बता दिया गया ये पॉइंट कि ये सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं है, बल्कि ये सबके लिए है। जितने लोग आएंगे सबके लिए अल्लाह ताला ने ये कानून लिख दिया। इसीलिए आप बहुत जगहों पे जब कोई ऐसी दहशतगर्दी की वाकयात होते हैं या कुछ होते हैं, तो फिर मुसलमान ना फौरन कहते हैं, देखो जी हमारी तो किताब के अंदर ये लिखा। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये तो बनी इसराइल का लिखा हुआ है, ये सबका है। ठीक है, क्या अन्नहू मन कतल नफ्सन, के बेशक वो जो कत्ल करे किसी नफ्स को, बगैर ही नफ्स से, बगैर किसी नफ्स के, यानी किसास के बगैर। किसास का हमने पढ़ा था ना सूरह बकरा में, कि नफ्स के बदले नफ्स कत्ल करना, किसी ने किसी को कत्ल किया तो उसके बदले उसको कत्ल कर दिया जाए, उसके बगैर, ऐसी कोई रीजन नहीं है। औ फसाद इन फिल अर्द, या फसाद भी, जो जमीन में फसाद करना है उसकी भी सजा कत्ल है, आगे भी आएगी। ठीक है, फसाद में क्या होता है, जमीन में फसाद में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जमीन का चैन और सुकून खत्म करना, जमीन में कत्लो गारत करना, जमीन में दहशत गर्दी करना, ये ड्रग्स के काम है, इसको बेचना खरीदना, इसको, ये सारे फसाद है जमीन के अंदर, डाके डालना, ये सारे फसाद है। तो फसाद करना, उसकी भी सजा कत्ल है, लेकिन उसने ये भी नहीं की और ना ही उसने किसी को कत्ल किया है, लेकिन फिर भी उसको कत्ल कर दिया गया। तो ये ऐसे है, पता ही नहीं कैसे, फक अन्नमा कतल नासा जमिया, ऐसे है जैसे कि उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया, जितने दुनिया में इंसान है ना सबको कत्ल कर दिया। अब ये इंसान ना सोचे कि एक को ही किया है, एक पूरी इंसानियत के ऊपर का कैसे आ गया ये, नहीं, अल्लाह ताला ने बताया ये पूरी इंसानियत को कत्ल कर देना। ये पॉइंट हम कैसे समझे, एक का कत्ल पूरी इंसानियत, पूरी इंसानियत तो बहुत बड़ी बात है ना, ये क्या क्या कहने, हमें क्या समझाया जाने जा रहा है यहाँ पे, हमें ये समझाया जा रहा है कि नंबर 1, एक इंसान के कत्ल को मामूली ना समझो, ये इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है, गोया कि किसी ने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, ये ऐसे है, इतनी ये बड़ी बात है अल्लाह के नजदीक, इतना बड़ा गुनाह है अल्लाह के नजदीक, यही बात। नंबर 2, इसके अंदर ये बात है कि जब एक इंसान को कत्ल किया जाता है तो असल में एक तरगीब, एक मोटिवेशन मिल जाती है दूसरों को, लोगों की नजरों में फिर वो जुर्म हल्का हो जाता है। अब देख लेना आजकल कितना हल्का हो गया, इसलिए कि रोज कत्ल की खबरें सुनते हैं। एक जमाना हुआ करता था, आज से 80 साल पहले या 60-70 साल पहले, एक जमाना होता था जिस वक्त के लोग बताते हैं कि एक गांव में कत्ल हो जाता था ना, तो सारे इर्द गिर्द के गांव वाले इतने खौफो हरास में मुबतला हो जाते थे, कई अरसे तक उसकी बातें होती रहती थी कि फलां जगह कत्ल हो गया, बहुत बड़ी बात होती थी। तो आज क्या कत्ल, आज आप देखें हम टीवी पे बैठ के कितना न्यूज में देखते हैं, फलानी जगह इतने लोग कत्ल हो गए, फलानी जगह ये हो गया, इतने को मार दिया, तो हमें कुछ भी नहीं होता, हल्का हो गया ना। तो जब ये चीज रिवाज पकड़ती है, एक कत्ल करता है तो उससे दूसरों को मोटिवेशन मिलती है कि इससे क्या हो गया, फलाने ने भी तो कत्ल किया था, चलो मैं भी किसी को मार देता हूँ, वो भी तो छूट गया, तो इस तरह सारा माशरा उसकी लपेट में आ जाता है। ऐसे ही नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया वलकुम फिल किसास हयातु या उलिल अलबाब, इसीलिए किसास लो, इसमें तुम्हारी जिंदगी है अकल वालों, अगर तुम्हें समझ हो। तो ये चीज माशरे के अंदर रिवाज पकड़ना शुरू हो जाती है, ये लोगों को आसान लगने लगता है, जो किसी के साथ कोई बात हो गई तो जो उठाया कोई चीज और उसको कत्ल कर दिया, कोई बात ही नहीं, अब उसके बाद भाग गए।
तो खसूसियत से बनी इसराइल का किरदार बताया गया, वो मजलूमों पर जुल्म उठाते थे, तो अल्लाह ताला ने उनका खास तौर पे नाम लेकर जिक्र किया, मगर बाकी सब के लिए ये एक बात बता दी गई कि चाहे वो उम्मते मुस्लिमा का फर्द हो, चाहे कोई भी हो, जो भी किसी को कत्ल, एक बंदे को भी ना, मजलूम को, मासूम इंसान को जिसका कोई कसूर नहीं है उसको कत्ल करेगा, तो उसके लिए ये है, इतना बड़ा गुनाह है अल्लाह के नजदीक। कौन है, कौन इतना बड़ा गुनाह लेके कयामत के दिन अल्लाह के आगे खड़ा हो सकता है, खुद सोचें। इंसान अपनी ख्वाहिश के लिए इस दुनिया में किसी को रास्ते से हटाने की कोशिशें करता है, आजकल लोगों के पास और नई चीजें हैं तो वो जादू टूनों से ही कोशिश करते हैं कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये भी एक कत्ल का तरीका है लोगों ने निकाला। लेकिन याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने गुनाह है ना जो इस लायक हैं कि उनकी सजा दुनिया में भी दी जाए और आखरत में भी, उनमें सबसे बढ़ के गुनाह सरकशी और कताए रहमी है। सरकशी और कताए रहमी, और काबील ने ये दोनों बातें की, वो हद से भी बढ़ गया कि उसने कत्ल कर दिया, और उसने कताए रहमी भी की, अपना सका भाई था, कोई और नहीं था। और अल्लाह ताला ने, देखिए सुभान अल्लाह, एक बात यहाँ पे पॉइंट और नोट कीजिए कि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि उसने कतला हाबील, ये नहीं फरमाया आयत नंबर 27, कतला अखी, अपने भाई को कत्ल कर दिया। भाई भाई को कत्ल कर सकता है? उसने इतनी बड़ी गुनाह काम किया। वो ये जो हद से बढ़ जाना, गुस्से में आ गए या इसमें आ गए, किसी की जान ले लेना, ये कोई छोटी बात नहीं है। यहां से हमें पता चलता है कि इंसानी जान की कितनी बड़ी वैल्यू है इस्लाम में, कि इंसानी जान कोई, आप देखें आज के वक्त के अंदर क्या, वो जाते जाते कहीं बैग रख दिया, वो पूरे जो बाजार के अंदर सब लोग बेचारे शहीद हो गए, किसी जगह पे किसी बस में रख दिया, कभी जहाज के अंदर लेके चले गए, कभी कुछ कर दिया, उनको क्या कसूर है? एक फर्द को भी मारना, अगर पूरी इंसानियत को कत्ल करना है, तो बताएं जो लोग इतने लोगों को मार दें उनका क्या है? तो इस्लाम कहता है कि इंसानी जान की बहुत कीमत है, बहुत कीमती चीज है, और सिर्फ मुसलमान की जान कीमती नहीं है, हर जान की। कहा गया कि नफ्स मुस्लिम नहीं, कहा गया कतला मुस्लिमन, नफ्स किसी जान को भी। और आप देखें यहाँ पे नफ्सन नकीरा है, यानी कोई भी जान। हम तो सोचते हैं ना सिर्फ मुसलमान है, वो यहूदियों वाली हमारे अंदर भी बात आ गई कि मुसलमान का, वो कहते हैं यहूदी का खून तो बहुत बड़ी वैल्यू वाला है, बाकी तो सारे कीड़े मकोड़े हैं, इन्हें मरते भी रहे तो कोई बात नहीं। आज मुसलमान भी सोचते हैं, मुसलमान कोई जाए दुनिया से तो वो बात, बाकी तो इनका काम, ये इसी लायक है कि मरे, अच्छा हुआ मर गए। ये एक मोमिन का तरीका नहीं होता। बहुत बड़ा कोई आपका कारनामा नहीं है, यही हम बड़ी खुश होने की बात है कि अच्छा हुआ मर गए, नहीं, इंसानी जिंदगी की अल्लाह ताला के यहाँ हुरमत है, इज्जत है। आप इससे अंदाजा कीजिए कि एक जानदार की भी, इवन यहां तक कि सुभान अल्लाह, वो जो आप जिबा करते हैं ना जिस जानवर को, उसको भी खाना तब जायज है जब अल्लाह का नाम लिया उसके ऊपर, तब उसके अलावा वो भी हराम है उसकी जान लेना और उसको कंज्यूम करना, उसको खाना। अल्लाह का नाम लेते हैं कि अल्लाह तेरे इज्जत के साथ इसको जिबा कर रहे हैं, वरना ये तेरी दीवी जान है, हम नहीं ये जान ले सकते, लेकिन अल्लाह तेरे नाम के साथ हम इसको जिबा कर रहे हैं कि तूने इजाजत दी है। इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स के लिए, कोई फन के लिए, कोई अपनी वो गुलेल ले लेते हैं या तीर अंदाजी का वो करना, कहीं किसी जानवर को बांध के उसके ऊपर तीर अंदाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने निशाने अच्छे करने के लिए, ये गुनाह का काम है, सख्त गुनाह का काम है। ठीक है, तो इवन आप किसी जानदार को उस वक्त तक नहीं मार सकते जब तक कि आपने मसलन उसको खाना नहीं है। मिसाल के तौर पे कि कोई फिशिंग करने जा रहा है, मछलियां पकड़ पड़, हमने खानी तो है नहीं, उसको फेंक के जा रहे हैं, आप वो मर रही हैं उनको फेंक रहे हैं, नहीं तो हमें फिशिंग का शौक है, नहीं ऐसे नहीं। तो जान जो है ना वो कीमती है, चाहे वो किसी भी जानदार की है, तो एक इंसान की जान तो फिर और भी ज्यादा कीमती है, उसको खत्म कर देना और इसको कोई चीज ही ना समझना। देखो इस कुरान में क्या है, और देखो आज अपने माशरों के हाल देखो,
जहां पे कोई टारगेट किलिंग हो रही है, कोई बोरी बंद लाशें मिल रही हैं, कोई कुछ हो रहा है, ये क्या है? ये मुसलमानों का तरीका है क्या, जिनके कुरान में ये लिखा हुआ है? फिर वही बात है कि खौफे खुदा अगर नहीं होगा तो फिर ये सारी चीजें हो जाएंगी, और अगर खौफे खुदा है तो फिर इंसान डरेगा कि मैं इसका जवाब कैसे दूंगा। अल्लाह अकबर। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी को और आदिल मुस्लिम बादशाह को कत्ल करने वाले पर सारी दुनिया के इंसानों के कत्ल का गुनाह है, इतना बड़ा ये गुनाह है। और फिर एक रिवायत में आता है कि एक को भी बेवजह मार डालने से कोई जहन्नमी हो जाता है, वो ऐसे ही है जैसे सारों को उसने मार दिया। और हम पहले पढ़ चुके हैं सूरत निसा के अंदर कि जो किसी को भी ना हक कत्ल करता है, ना हक, उसका कोई कसूर नहीं है या उसको कोई सजा के तौर पे नहीं, जैसे फांसी की सजाएं होती हैं उसके लिए, उस तरह से नहीं, वरना तो वो जो देने वाले हैं सजा वो तो पता नहीं कितना के मुजरिम हो जाए, वो नहीं, वैसे ना हक कत्ल करता है, तो हमने पढ़ा था कि उसके लिए जहन्नम है और उसके लिए अल्लाह का गजब है और अल्लाह की लानत है और बड़ा अजाब है। कितनी सारी सजाएं आई थी वहां पे। वमन अहयाहा, और जो कोई जिंदा करता है, यानी जिंदगी तो अल्लाह ही देने वाला है, मगर मतलब यहाँ पे ये नहीं कि कोई इंसान भी जिंदगी देता है, नहीं, ये नहीं मतलब, यानी किसी ने किसी को बचा लिया। फकअन्नमा अहया अन्नास जमीअ, देखो कितना खूबसूरत है तुम्हारा दीन, अगर ये लोग इस दीन को बदनाम कर रहे हैं, लोगों के गले काट काट के और सर उनके दिखाते हैं, फिर यूट्यूब पे वीडियोस बना के सर दिखाते हैं, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं कहता, ये क्यों इस्लाम को बदनाम करते हैं अपने गलत अमल की वजह से? देखो इस्लाम तो इतना खूबसूरत दीन है जो कहता है एक को जिंदगी दी ना, एक इंसान को, तो पूरी गोया पूरी इंसानियत को जिंदगी दी, पूरी इंसानियत को कैसे, यानी एक इंसान अगर किसी की जान बचा देता है, फॉर एग्जाम्पल के उसको मसलन खून का अतिया दे देता है, उसको खून चाहिए था, या किसी की जान बचाने के लिए कोई डूब रहा था उसको बचा लिया, कोई ट्रेन के नीचे आ रहा था उसकी जान बचा ली, कोई किसी और तरह किसी बीमारी में ऐसे मर्ज में था कि उसको कोई ऑर्गन की जरूरत थी, तो वो उसको किसी इंसान के पास अगर फॉर एग्जाम्पल किडनी है या ऐसे ही कोई ऑर्गन है जो कि उसके बगैर वो मरता नहीं है, मतलब बोन मैरो वगैरह, उसका मैच हो गया, आपने उसको दे दिया, उसकी जान बच गई, या डॉक्टर हजरात हैं, देखो वो मतलब किस तरह से किसी के लिए दिन रात अपने एक करते हैं, आजकल कोविड केस के अंदर अपनी भी जान खतरे में डाल के लोगों के लिए जाने बचाने के लिए कोशिश करते हैं, वो सारे इसके अंदर आ गए। इस तरह फायर फाइटर्स हैं, कहीं आग लग जाती है वहां पे लोगों को निकालते हैं जाके, तो ये चीजें ऐसी हैं कि ये किसी की जान बचा लेना, किसी एक को भी जिंदगी दे देना, इतना बड़ा सवाब का काम है, इतना बड़ा सवाब का काम है। आजकल हम कहते हैं हमें क्या मुसीबत पड़ी कि हम इसमें पड़े, कोई मसलन कोई देख लेता है किसी ने किसी को गन पॉइंट पर पकड़ा हुआ है या किसी को कोई हरासा कर रहा है, वो कहते हैं हमें क्या करते रहे। आजकल लोग इतने बेहिस हो गए हैं कि वो लोगों को लूट के लोग ले भी जाते हैं सबके सामने, होता है, वो कहते हैं हमें नहीं जरूरत है हम इसमें पड़े। तो किसी भी इंसान को बचाने का कोई भी तरीका है, चाहे कोई अबॉर्शन कराने जा रहा है आपने उसको रोक दिया, एक जान बचा ली आपने, या किसी कोई किसी को मारने का इरादा रखता है और आपने उसको समझा दिया, किसी के इलाज के लिए आपने पैसे दे दिए जिसकी जान बच गई, उसका इलाज इतना महंगा था वो नहीं करा सकता था, मर सकता था उससे बीमारी से, लेकिन आपने उसके लिए पैसे दे के उसकी जान बचा ली, इलाज के काबिल हो, कितने लोग बेचारे मर रहे होते हैं, दवाइयां के पैसे नहीं होते, इंजेक्शंस के पैसे नहीं होते। तो ये सारे ही काम ऐसे हैं कि जिसके अंदर आपने, और आप और भी जितने तरीके इसके अलावा भी जो भी आप देखते हैं अपने रोजमर्रा जिंदगी में, कैसे किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है, ये छोटा अमल नहीं है, ये बहुत बड़ा नेकी का काम, इतनी बड़ी भलाई है कि सोचो कि पूरी जमीन पे जितने इंसान है उनके साथ उसने भलाई कर दी, उन सबको जिंदगी दी। आज देखो हम ये बातें ही भूल चुके हैं, आज हम सबसे पहले पूछते हैं कि किसी के पास पैसे हैं इलाज कराने, अगर पैसे नहीं है तो फारिग बचा मरते रहो वहां पे उसके अस्पताल के फर्श पे ही मर जाए तड़प तड़प के, उसको इलाज नहीं करते, कहते हैं कि नहीं इतना बिल पहले इतने पैसे लाओ जमा कराओ तो फिर हम करेंगे। और फिर वैसे भी लोगों की, उनका तो हमें कुछ ख्याल ही नहीं है कि कुछ चीज की जान जाती है तो जाती, फिर हमें क्या, हम क्यों अपने आप को खतरे में डालें। तो आप देखें कि कई डॉक्टरों ने अपने आप को, आज उनको हीरो का खिताब दिया जा रहा है, और कई ऐसे हैं वो अपनी जानें बचाने के लिए कहते हैं कि हमें गलत ही लिख दो कि हम नहीं जा सकते, हम बीमार हैं, हम खुद ना तो अपनी जान बचा के बैठ जाते हैं, हम क्यों बीमार हो, हम क्यों अपने आप को मुसीबत में डालें। कई ऐसे भी होते हैं। आज आप देख लें कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं या जहां पे भी मुसलमान हैं, मुसलमानों का किरदार आपको इनमें से कौन सा लगता है और गैर मुस्लिमों का कौन सा लगता है? दुख होता है ये पढ़ के भी कि हम किस कदर गिर चुके हैं, ये किरदार है हमारे अंदर आज उलट हो चुका है, जो हमें करना चाहिए था वो दूसरे लोग कर, हमें तो इनको बताना चाहिए था, आज हम इनसे सीखें। ये कोई बात नहीं है, वो बाद में होगा पैसों का मामला, वो बाद में बिल जितने मर्जी चाहे मिलियन का बिल भेज दें, लेकिन इस वक्त आपको इनकार नहीं करेंगे इलाज करने से, कोई वापस नहीं करेगा कि नहीं आपका इलाज नहीं करना पड़े, मरते रहो। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। वलकद जाअतहुम रुसुलुना बिल बय्यिनाति सुम्मा इन्ना कसीरन मिनहुम बादा ज़ालिका फिल अर्दि लमुसरिफून। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इनके पास रसूल भी भेजे, रोशन निशानियां दे के भेजे इनके पास, यानी अल्लाह ताला ने अपने अहकामात भेजे अंबिया के जरिए, याद दहानी इनको कराई इन बातों की, लेकिन इसके बावजूद इनका यह हाल था कि इन्ना कसीरम में हम बाद डाले के फिर अर्दी मुशरिकून, इनमें से अक्सरियत जो थी ना इसके बाद भी जमीन में हद से ही बढ़ने वाली थी, फिर भी ये बाज नहीं आए, फिर भी इन्होंने अपने काम छोड़े नहीं, हद से बढ़े रहे। यानी आज आप देखें, वो कहते हैं, यानी किसी ने मुझे बताया था, किसी डॉक्टर ने, उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे लोग आते हैं कि यानी कटे फटे, क्या होता है कि एक उन्होंने हमारा मारा था, हम उनके 10 मार के आए हैं। आप देखें इस तरह दुश्मनियां आगे से आगे, आप न्यूज में भी सुनते हैं एक ही खानदान के उन्होंने इतने सारे अफराद खत्म कर दिए अपनी पुरानी दुश्मनी की वजह से। ये देखें हमारे हालात, तो वो मुसरिफ हैं, हद से बढ़ जाने वाले, हद से आगे चले जाने वाले। इन्नमा जज़ा उल्लदीना, अब आगे आ रही है एक और बात मुहारबे की, अभी ये इंसानी जान की हुरमत की बात और इसकी बात चल रही है, और इसके बाद हमें बताई जा रही है अब कुछ हुदूद की बात आएगी कि क्या इनको सजाएं मिलनी चाहिए, क्या ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए। इन्नमा जज़ा उल्लदीना, बेशक जज़ा इसके सिवा कोई नहीं है, इन्नमा का मतलब क्या, इसके सिवा कोई नहीं है, जज़ा इसके सिवा कोई बदला नहीं है इनका, किनका, अल्लदीना युहारिबून अल्लाह, वो जो मुहारबा करते हैं अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करते हैं। मुहारबा असल में हर्ब से है, इसका माना होता है छीन लेना किसी से, ये सलामती का उलट है, हर्ब का मतलब होता है बदमनी फैलाना, इक्का दुक्का कहीं कोई चोरी हो गई, कोई कत्लो गारत हो गया, ये नहीं इसमें, ये चीज मुहारबे में नहीं आएगी, बल्कि ये तब होगा जब कोई इतना कॉमन हो जाए ये, और जब गैंग अप होके लोग करने लगे, क्योंकि अल्लादीना है ना वो लोग, उन लोगों की, इसका मतलब जत्थाबंदी करें, ग्रुप बनाएं, गैंग्स बनाएं, और वो लोग जो मुहारबा करते हैं अल्लाह और उसे उसके रसूल से। अब आप यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अल्लाह और उसके रसूल से मुहारबा करने का मतलब क्या हुआ, अल्लाह और उसके रसूल के साथ, यानी अल्लाह और उसके रसूल के कानून को तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, बेशक उन, वो जाहिर है अल्लाह रसूल से तो नहीं कोई मुकाबला कर सकता, उनका मुकाबला तो आम इंसानों के साथ ही होता है ना, कहीं डाके डाल रहे हैं, कहीं बगावते कर रहे हैं, कहीं कत्लो गारत कर रहे हैं, इंसानों के साथ मामले हो रहे हैं, लेकिन दर हकीकत उनकी जंग किसके साथ है, अल्लाह रसूल के साथ है, क्योंकि एक मुल्क के अंदर अमनो अमान के अहकाम किसने दिए, चैन और सुकून के साथ लोग रहें और किसी की जान, किसी की माल, किसी की इज्जत के ऊपर कोई हाथ ना डाले, ये हराम है दूसरे के ऊपर, ये हुक्म किसका है, ये अहकामात किसके हैं, किस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें फरमाई थी? हज्जतुल विदा के खुतबे में फरमाई थी कि इस काबे से भी ज्यादा हुरमत है दूसरे मुसलमान की। तो एक इस्लामी मुमलिकत के अंदर जब जहां पे अल्लाह और उसके रसूल का कानून नाफिज होगा, वहां पे कोई इसको तोड़ता है तो उसकी ये सजाएं हैं, यानी इस्लामी मुमलिकत में ये सजाएं होनी चाहिए नाफिज। ठीक है, तो क्या वो, और वह यस आउना फिल अर्दी फसादा, और वो दौड़ धूप करते हैं, यानी वो मुलव्विस हैं इसके अंदर, उनकी वो गैंग अप होते हैं इस चीज के लिए कि जमीन में फसाद करें। अभी मैंने आपको फसाद का बताया कि फसाद जमीन में कैसे कैसे होता है, कहीं उजाड़ देना जगहों को, कहीं दहशत गर्दी की चीजें करना, ये टेररिज्म आजकल जो जितना भी शुरू हुआ है, जैसे कोई कुछ रख देते हैं, या खुदकुश हमले हो रहे हैं, या कुछ इस तरह, खुदकुश में तो खतर वो तो खुद ही खत्म हो जाता है, लेकिन और चीजें जहां पे लोगों को उनके जाने सल्ब की जा रही है, खून रेजी की जा रही है, निहत्ते और मासूम लोगों को मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, इज्जतें उनकी पामाल की जा रही हैं, रेप्स हो रहे हैं, गैंग रेप्स हो रहे हैं, माँ का रेप किया जा रहा है बच्चों के सामने, छोटी छोटी मासूम बच्चियों को ले जाके उनके साथ क्या किया जा रहा है। इसी तरह ऐसी वीडियोस बनाई जा रही हैं बच्चों की पोर्नोग्राफी की, और वो लोग दंडनाते फिर रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं क्योंकि वो बड़े ताकतवर। तो ये है फसाद जमीन में। फसाद क्या चीज होती है जमीन में? यानी जब लोग बेचारे अमनो अमान से रहना चाह रहे हैं, जो लोग रहना चाह रहे हैं उनको रहने दो, उनको अमन से नहीं रहने देना, उनकी सलामती और उनके अमन को तबाह करके रख देना। अब इन सारी सूरतों को आप देख लें, आप चाहे इसके अंदर गन पॉइंट के ऊपर लोगों को लूट रहे हैं, बसों को लूट रहे हैं, गाड़ियों को लूट रहे हैं, या वहां पे बम फाड़ रहे हैं, या वहां पे गोलियां चला रहे हैं जाके बाजारों के अंदर, या किसी किस्म की भी, या ये रेप्स हो रहे हैं, जो कोई औरत एक रात को निकलती है और किस तरह से उसको उसके बच्चों के सामने कैसे उसकी इज्जत उतारी जाती है, किस तरह के वो हो रहे हैं, ये सब फसाद है। और ये मुहारबे में आते हैं अल्लाह उसके रसूल के साथ, ये अल्लाह रसूल के भी मुजरिम है। तो अब उसकी सजा क्या, अब सुन ले जरा सजा, अल्लाह करे काश कि ये सजाएं नाफिज हों। क्योंकि देखिए इस्लाम में ना दो तरह की सजाएं हैं, एक सजा को कहते हैं हदूद। हदूद कौन सी सजा है? जो अल्लाह ताला ने खुद बता दी, जैसे अब ये मुहारबे की है, ये फसाद की है, या इसी तरह चोर के हाथ काटने की आगे बात आ रही है, इस तरह जिना की सजा है, शादीशुदा की, गैर शादीशुदा की, तोहमत लगाने की किसी के ऊपर जिना की, उसकी सजा है। तो ये सजाएं अल्लाह ताला ने, इस तरह और भी कुछ सजाएं हैं, शराब नोशी के ऊपर भी सहाबा के इजमा से पता चलती है हमें सजा। तो ये अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमा दी कि ये सजाएं इस जुर्म की, ठीक है, उनको कहते हैं हुदूद। ये बहुत ज्यादा नहीं है जो है मैंने आपको बता दी। दूसरी किस्म की है ताजीरात, जिसको कहते हैं ना ताजीरात पाकिस्तान, ताजीरात हिंद। वो ताजीरात क्या होती है? वो जज की सवाबदीद पे है कि वो क्या सजा दे, हालात को देख के, वाकयात को देख के, सारे वो उस माहौल को देख के वो अपनी तरफ से कोई सजा सजेस्ट करे। अब वो भी हो सकती है कि कत्ल का बदला कत्ल, या कत्ल की तो नहीं खैर, क्योंकि कत्ल की तो इस्लाम ने बता दी है, हुदूद है, लेकिन कोई और भी मसला है उसकी सजा, किसी ने किसी को धोखा दिया, किसी ने किसी को फ्रॉड कर दिया, ये कर दिया, तो अब उसकी सजाएं जज देगा। ठीक है, अब बाद सजाएं तो वो वाली हैं जो हदूद वाली हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अलावा जितनी चीजें हैं वो कोई जुर्म ही नहीं है, वो भी जुर्म है, लेकिन वो ताजीरात के जरिए उसकी सजा दी जाती है। हर एक की सजा अल्लाह ताला ने नहीं बता दी कुरान पाक में। अच्छा, अब जो हदूद है ना, इनकी ना माफी हो सकती है, सिवाय एक एक्सेप्शन है जो वो कत्ल की बात है, जो दियत देना और वो है, सिवाय उसके, उसके अलावा जो हदूद की सजाएं हैं उनमें कोई माफी नहीं हो सकती, ना कमी बेशी हो सकती, कोई जज उनको, ये जो आज के वक्त में आपको बताते हैं ना कि भाई किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, उसके बाद उसने वजीर आजम को जो है ना रहम की अपील भेज दी, उसको फांसी लगनी थी तो रहम की अपील भेजी, तो उन्होंने जी सदर साहब ने उसकी रहम की अपील मंजूर कर ली है, अब उसको फांसी नहीं दी जाएगी, अब उसको उम्र कैद दे दी जाएगी या उसकी और सजा कम कर दी जाए, ये किसी को भी नहीं हक है, ये तो उसके वुरसा को हक दिया गया, सिर्फ ये सिर्फ कत्ल की हद के अंदर सिर्फ वुरसा को हक है, बाकी तो जितनी है, चोरी है, जिना है, मुर्तद होना है, या शराब नोशी की है, या जो जितनी भी और है, उनमें किसी को भी मिजाल नहीं कि वो इसको कम करे। जैसे एक मुकदमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया था किसी ने एक चादर चोरी कर ली, वो असल में एक सहाबी थे, वो सोए पड़े थे और उनके सर के नीचे कीमती चादर थी। जो चोर था उसने सोचा कि तो सोए पड़े हैं, तो उसने वो हल्का सा करके चादर खींच निकाली नीचे से। इतने में उनकी आंख खुल गई, वो लेके भाग रहा था, उन्होंने जाके पकड़ लिया। अब जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। अब जब सारे सबूत मिल गए तो आपने फरमाया कि इसके ऊपर हद जारी होगी, हाथ काटा जाएगा। तो वो जिसकी चादर चोरी की थी ना, जब उसने देखा कि इसको हाथ, चोर को हाथ कटने लगा इसका, तो उसने कहा कि या रसूल, मैं इसको माफ करता हूँ, इसको जाने दे। तो आपने फरमाया नहीं, अब नहीं, या तो तुम पहले ही मेरे पास ना लाते और पहले ही माफी तलाफी कर लेते, फिर तो अलग बात थी, लेकिन अब नहीं माफी हो सकती, अब मैं भी नहीं कुछ कर सकता। यानी जब किसी के ऊपर हद यानी साबित हो जाए और जज ने उसका फैसला बता दिया कि इसके ऊपर हद लगेगी, अब उसके बाद कोई कमी बेशी नहीं हो सकती उसके अंदर, कोई माफी तलाफी नहीं हो सकती उसके अंदर। समझ आ गई बात? अब ये देखें कि यहां पर जो मुहारबे की, इसको कहते हैं आयते मुहारबा, ठीक है, इसमें मुहारबे का कानून है, ठीक है। और जो शदीद तरीन और इस कदर डिस्कस्टिंग किस्म के जराइम हमारे माशरों में हो रहे हैं, फसाद फिल अर्द के, उनकी ये सजा है। उस वक्त हम सोच रहे थे कि हाय इनको सजा क्यों नहीं मिलती और ऐसे क्यों नहीं हो रहा। इस्लाम ने तो सजाओं का तरीका कार तक कितना सख्त बता दिया है कि, और आपको इससे पता चलेगा कि इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, नो टॉलरेंस ऐसे लोगों के लिए जो ये काम करते ना, नो टॉलरेंस। क्या उनको करो, युकत्तलु, ये कत्ल नहीं सिर्फ करना, युकत्तलु, टुकड़े टुकड़े करके इनको खत्म कर, सख्त तरीन अंदाज है, इतनी शिद्दत है। आपको पूरे कुरान में ना इतनी ज्यादा सख्त सजा की आयत कोई नहीं मिलेगी जितनी ये है, इतनी ज्यादा इसके अंदर सख्त सजा है। इसका मतलब है कि इस्लाम नहीं चाहता कि माशरे के अंदर बदमनी हो, इस्लाम चाहता है माशरों के अंदर सकून हो, अमन और चैन हो, और सबसे अव्वलीन जो किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि माशरे में पीस हो, लोग चैन से जिंदगियां गुजार सके, किसी को अपने माल के लुटने की, किसी को औरत को कहीं बाहर निकलते हुए अपनी इज्जत की वो ना हो कि भाई मेरी कोई इज्जत खराब कर देगा या कुछ है। देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक जमाना आएगा कि एक औरत वहां से चलेगी और यहां तक आएगी और उसको कोई भी आंख उठा के देखने वाला भी नहीं होगा कि कोई उसको लूट ले या कुछ नहीं। ऐसा भी अमन का वक्त आया था, तो किसी की इज्जत लूट लेना ये इसको तो कोई आम ही बात, बल्कि वो बेचारे जो मजलूम है वो तो बोल ही नहीं सकते कि उनको पता है कि हमारी बदनामी अलग होगी और होना भी इसका कुछ नहीं है। जबकि इस्लाम क्या कह रहा है, मुहारबा जो करता है उसके साथ ये करना, किसी की क्या मिजाल है कि वो बदनाम अमनी फैलाए जब उसको पता हुआ कि टुकड़े टुकड़े करके उसको खत्म करा जाएगा, और युसल्लब या सलीब दिया जाए यानी सूली पर चढ़ा दो उसको, वहीं पर लटकता रहने दो कि दुनिया देखे और इसको ये इबरत का निशान बने, वहीं पर लटकता रहे, आते जाते लोग देखे और उनको पता चले कि ऐसे नहीं करना हमने। देखिए ये होती है कि फिर लोगों के दिल में खौफ पैदा हो जाए उस जुर्म को करने से, लोगों के दिल डर जाए, इबरत हो उनको। और आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एक वाकया हुआ था सबको याद ही होगा, पाकिस्तान में एक बच्ची जैनब के साथ जो केस हुआ था, छोटी मासूम बच्ची, उसके कातिल को जब कत्ल भी उसने किया और उसने गलत काम भी किया बच्ची के साथ, तो जब ये कहा जाने लगा बहुत से लोगों की तरफ से इसको सरेआम फांसी दी जाए, तो उस वक्त बाज एनजीओ खड़ी हो गई कि नहीं सरेआम नहीं फांसी देनी, वरना इस तरह तो ये बहुत गलत हो जाएगा, ये तो जालिमाना है सरेआम। और कभी इसको चोर के हाथ काटने की सजा को, कभी सरेआम फांसी देने को जालिमाना कहते हो, खुदा का खौफ नहीं करते। इन लोगों को हमदर्दी किसके साथ है, मुजरिम के साथ, इनको मजलूम के साथ हमदर्दी नहीं है। जिस वक्त वो जुर्म कर रहा था वो इंसान सुनता भी है जुर्म, तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई जी शऊर इंसान कांपे बगैर नहीं रह सकता। और ये कहते हैं कि नहीं इनको बंद कमरों में फांसियां तो ना किसी को पता चला ना कुछ, बस एक खबर आई है। नहीं, ऐसे लोगों को जब सरे आम लटकाया जाए तो तब लोग बहुत अरसे तक, एक पहले वाकया हुआ था जो कि हमारे भी पेरेंट्स बताते हैं कि वो एक बच्चे को गवाह किया था और कत्ल कर दिया गया था, तो उस जमाने में उसके मुजरिम को सरेआम फांसी दी गई थी और बहुत अरसे तक अगवा बंद हो गए थे। तो ये जो बच्चों को अगवा करना और फिर उनसे जाके वो तो सारी जिंदगी वालदैन उनकी शक्लें देखने को तरस जाते हैं, उन बच्चों को ले जाते हैं, फिर उनसे लेबर वर्क कराते हैं, उनको फ्री की लेबर मिल जाती है, वो बच्चे कभी मिल नहीं सकते पेरेंट्स को, बच्चियों को अगवा कर लेते हैं, फिर उनको बेचते हैं आगे और उनसे क्या क्या काम कराते हैं, सबको पता है ये बात। इस तरह की जो भी गैंग्स हैं, ऐसे लोगों के ये सजाएं हैं, किधर इस्लाम की ये सजा नाफिस हो रही है? सऊदी अरब में कुछ कुछ ऐसी चीजें नाफिस हैं और फिर उनकी बाज वीडियोस भी आप देखते हैं और फिर आप देख लें कि वहां पे फिर क्राइम का रेट कितना कम है, बिजली मिजाल है जो ये काम करें। आपको नहीं मिलेगा ऐसे कि बसें लूट रहे हैं, लोगों को कत्लो गारत हो रही है, औरतों की इज्जतें नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। और तो कत्ता आई दी है या काट दिए जाए उनके हाथ और उनके पैर, मिन खिलाफ है, मुखालिफ सिमत से, यानी ये अब जज के ऊपर है कि चार सजाएं बताई जा रही हैं यहाँ पे, इनमें से उसकी जुर्म की नौइयत क्या है। पता नहीं एक बंदे ने किसी को रेप भी किया और उसके बाद उसको कत्ल भी कर दिया, तो उसको एक से ज्यादा सजाएं दी जा सकती है, उसके हाथ पैर पहले काटे जाए फिर उसको सूली चढ़ा दिया जाए, फिर किसी का काम का जुर्म है तो उसको उसके मुताबिक दी जाए, और युनफाउ मिन अल अर्द, या वो निकाल दिए जाए जमीन में से, यानी जिसको कहते हैं कि काले पानी की सजा दे दी जाए उनको, ये नहीं कि जेल में डाल के उनको पालना शुरू कर दें कि अब इनको खाने भी मिल रहे हैं और आराम भी कर रहे हैं, वहां पे उनको वहां से एक्सपेल कर दिया जाए। पहले जमानों के अंदर लोगों को छोड़ आते थे दूर कहीं जहां पे कोई भी नहीं होता था, तो उनको जमीन से निकाल दिया जाए। ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا, ये तो अभी उनकी दुनिया की जिल्लत है जो उनको मिली है, وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, आखरत में उनके लिए बड़ा अजाब है, बड़ा अजाब। तो ये तो दुनिया में है, अभी जब उनको ये सजा मिल जाएगी तो अभी उनकी सजा खत्म नहीं हुई कि यहां में मिल गई तो खत्म हो गई, अभी आखरत में उनकी सजा बाकी है, आखरत में भी बड़ा अजाब उनके लिए रखा। क्योंकि देखें जब एक बंदा कोई ये करता है तो वो सिर्फ एक के साथ नहीं कुछ कर रहा, मुहारबा है ही, देखे ना कि अल्लाह और रसूल के हुक्म की मुखालफत पे तुल जाना, अब उसने उनकी भी मुखालफत की है, जब उसने डाके डाले हैं, जब गैंग अप हो के, देखें बाज दफा अल्लाह ताला माफ करे ऐसे ऐसे भी वाकयात के, इंसान कि किसी घर के अंदर घुसे और सारों को कत्ल कर दिया, एक वाकया हुआ था और फिर एक बेटा उसके अंदर बच गया, सिर्फ वो भी कहीं छुप गया जाके तो वो बच गया। ये जो सारी इस किस्म की है ना, जिससे इतना बड़े फसाद पैदा होते हैं, इतनी बड़ी बदनामी पैदा होती है उनके साथ, तो उन देखिए हुकुल इबाद की भी तो एक वैल्यू है, उनके साथ तो बुरा किया ही, उसको तो कत्ल किया, अल्लाह के हुक्म को भी तोड़ा, रसूल की बात की भी नाफरमानी की, ठीक है? तो ये एक चीज नहीं है ना, किसी का माल छीना, उसका भी हक सलब किया और प्लस अल्लाह ताला के भी हुक्म को तोड़ा। तो इसलिए इनकी सजा दुनिया में नहीं है सिर्फ, इनकी सजा आखरत में भी रखी गई है, क्योंकि दुनिया में नहीं मिल सकती उतनी सजा, ये उनकी रुसवाई है कि जब हाथ पैर कटे हुए फिर रहे होंगे या जब सूली चढ़े होंगे या जब इनको दर्दी से या टॉर्चर करके उनको कत्ल किया जाएगा, पहले टॉर्चर किया जाए फिर कत्ल की। और देखें यहाँ पे जब तो कत्ता है, आगे आप देखेंगे कि वहां पे जो आगे सारे परसारिका की सजा आएगी ना चोर और चोरी की, वहां पे ये तशदीद नहीं है। अब तो कत्ता का मतलब क्या, यानी ऐसे हाथ पैर काटे जाए कि किसी भी सिमत में काट दिया जाए, ये नहीं कि कोई प्रॉपर पकड़ के ऐसे काटा जाए, किसी भी जैसे मर्जी कट जाए इस तरह। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के अंदर ऐसी कोई सजा दी गई थी? जी हाँ, बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये वाकया आता है कि कबीला एक था, उसके 8 आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने कहा हमें कोई बीमारी है कोई इस तरह, तो आपने इनसे फरमाया अगर तुम चाहो तो हमारे चरवाहों के साथ चले जाओ, ऊंटों का दूध और पेशाब तुम्हें मिलेगा, यानी एक मेडिसिन के तौर पे। आपको पता है ना कि जो हलाल एनिमल्स हैं इनका जो पेशाब है वो नजस नहीं है, चुनाचे ये दिए गए और जब उनकी बीमारी चली गई, अब वो ठीक ठाक हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जो चरवाहे थे उनको मार दिया और उनके ऊंट भी लेके चले गए। अच्छा, वो बेचारे चरवाहों का तो क्या कसूर था, उनको तो उन्होंने इनको सर्व किया और उसके बाद उन्हीं को मार भी दिया और उनके ऊंट भी लेके चले गए। यानी डाका भी जैसे होता है ना, ये गन पॉइंट पे किसी से माल भी लूटती है और उसके बाद उसको गोली भी मार दी, उसके सामान भी ले गए सारा। अच्छा, अब हमें ऐसी खबरें तो खैर अल्लाह ताला हमें माफ कर दे कि हम उस माशरे में रहते हैं, हम मुस्लिम माशरे कहते हैं अपने माशरों को, लेकिन हम उन माशरों में रहते हैं जहां पे ये तो कोई छोटी बात समझी जाए। ये तो कोई रोज की खबरें हैं, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ये हुआ, आप मुझे बताएं इससे आप कोई शॉक हुए कि हाय क्या उन्होंने कर दिया? नहीं, ये तो मामूल है, ऐसा तो होता ही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर पहुंची तो आपने सहाबा को उनके पीछे दौड़ाया कि उनको पकड़ के लेकर आए। तो उनको जब पकड़ा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो उनके हाथ पांव पहले काट दिए गए, उनकी आंखों में गर्म सलाइयां फेरी गई। कहा जाता है इन्होंने भी उन चरवाहों की आंखों में फेरी थी, तो वही सलाइयां उनकी आंखों में फेरी गई और धूप में उनको फेंक दिया गया, वो तड़प तड़प के मर गए। समझ आई बात? इसलिए कि इस्लाम टॉलरेट नहीं करता जुल्म को, याद रखें ये बात, ना कि लोग इस्लाम के नाम लेके जुल्म करने लगे। कितनी शर्म की बात है कि वो इस्लाम जो ये कवानीन देता है ताकि इस तरह की चीजें कभी ना हो सके, वो ही लोग आज इस्लाम का ही नाम यूज करके ये काम करते हैं और कहते हैं नहीं, हम तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, हम तो इस्लाम के नाम पे जिहाद कर रहे हैं। लोगों को कत्ल करना, उनके बाजारों, उनके स्कूलों के अंदर बच्चों को मार देना और वो बच्चे छुपते फिर रहे हैं, हम भूल गए होंगे, मगर क्या उनके माँ बाप कभी भूल सकते हैं इन बातों को? और अल्लाह के यहाँ तो भूल नहीं है। स्कूल के अंदर घुस के जब ये काम किए जिन्होंने, उसके बाद बताएं ऐसे ही लोगों के लिए ये सजाएं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये कुरान आज कहाँ है, कहाँ है ये कुरान? क्या ये सिर्फ क्लासों में पढ़ाए जाने के लिए? और हमारी हमदर्दी आज मुजरिमों के साथ है, ये मुजरिमों को ना सजा दी जाए, हाय इनके साथ ऐसे, हाय ये तो बड़ी जालिमाना सजाएं, जालिमाना ही ये। यानी आपको हमदर्दी है इन लोगों के साथ, इनके साथ क्या इनको मेहमान बनाया जाए, इनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, इनको ना सजा दी जाए, छोड़ दिया जाए? कहते हैं जालिमाना, और वो जो वो जुल्म करते हैं वो नहीं जालिमाना नजर आता? आज हमारे क्या क्राइटेरिया बन गए हैं? आपको पता है, एक मैं तो सिर्फ ऐसी साइट पे एक बात याद आ गई मुझे, जब बहुत तकलीफ होती है ना, तो ये एक सच्चा वाकया है जो मैं आपको बताने लगी, आंखों देखा वाकया। एक जू था पाकिस्तान में, वहां पर एक शेर था, तो वो साइकिल पे कोई बंदा जा रहा था, अल्लाह अकबर, उस बंदे ने साइकिल से उतर के एक जंगला फलांगा, फिर दूसरा फलांगा, फिर पैर से जूती उतारी और वो जो केज था ना शेर का, उसके अंदर अपना हाथ ले जाके, वहां पे शेर बैठा हुआ था, उसके मुंह पे मारने लगा जूती, बार बार मारता जा रहा है और वो शेर का मुंह इधर इधर हिल रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और वो शेर जूतियां खाता जा रहा है। पता है शेरों का भी ये हाल हो जाता है, जब वो अपनी वो बहादुरी, वो अपनी जो वो थे वो भूल जाते हैं, वरना वो ही शेर इसका कीमा बना के रखते, लेकिन उसका क्या हाल हो गया? ये मैं बात आपको इसलिए बता रही हूं कि आज उम्मत मुस्लिम का भी यही हाल है, वो जूते खा रही है मुंह पे, ये शेर है, लेकिन जिस दिन इनको अपना पता चल गया ना कि हम क्या हैं, इनको तो अपना ही वर्थ नहीं पता, अपनी वर्थ नहीं पता, इसीलिए इनके मुंह पे जूतियां मारे जा रहे हैं और ये खाते ही चले जा रहे हैं। जिस दिन पता चल गया ना कि मैं शेर हूं और मुझे उठना है और ये सब गलत है जो हो रहा है, उस दिन फिर देखें कि फिर क्या ये बन के आगे आता है, फिर दुनिया को पता चले आज तो ये शेर भी भीगी बिल्ली बना हुआ है। जिसको खुद ही नहीं अपना पता, वो क्या किसी और को भी बताएगा, या क्या उसकी जिसमें खुद ही अपनी गैरत नहीं रह गई, क्या किसी और को सबक सिखाएंगे? लोग तो हंसते ही होंगे कि इनके अपने मुल्कों के हाल देखें और इनकी इनकी अपनी औरतों के साथ जो होता है, वो एक गैर मुस्लिम मुल्क में अपने आप को ज्यादा सेफ महसूस करती हैं बजाय कि एक मुसलमानों के इलाके में अपने मुसलमान मुल्क में। तो आज हम इस नहज पे पहुंच गए हैं, फिर वाकई फिर वो जूतियों के काबिल ही रह जाते हैं। और एक औरत थी, वो एक ही औरत थी जिसका दुपट्टा वो यहूदी ने फंसा दिया था कि जब वो खड़ी हुई यहूदी की दुकान से तो उसका दुपट्टा उतर गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस बनू कैनका के साथ किया क्या था फिर बताइए? हाँ जी, कभी उठा के देखें सीरत, फिर आपको पता चले वो एक औरत का वाकया था और मुसलमान ने कत्ल कर दिया था फिर उस वक्त उसको, और फिर उसके बाद इनके ऊपर चढ़ाई की गई थी, उन्होंने भी उस मुसलमान को कत्ल कर दिया था। लेकिन आज आप सोचे नबी अलैहिस्सलाम देख लें कि मुसलमानों की औरतों की इज्जतों का क्या हाल कर दिया है, कि कोई औरत अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती, कोई बच्ची अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती। आज दिल नहीं करता कि ये वाकई उम्मत खड़ी हो दोबारा, उम्मत जागे, क्या थे और क्या हो गए, ना कोई जान की परवाह है, ना कोई किसी की इज्जत का कोई पास, ना किसी के माल में की कोई तहफ्फुज है, सब कुछ ही लुट गया, कुछ रह गया। और बस हम ये आयतें पढ़ के अब चले जाएंगे, कुरान बंद कर देंगे और बस ये इसी में पढ़ने के लिए ही है और नोट्स बनाने के लिए। और जब मुसलमानों से पूछा जाए आपके पास शरीयत नाफिज कर दे तो वो कहते नहीं, हमें शरीयत से डर लगता है। जिस दिन शरीयत नाफिज हो गई ना, फिर ये जो सारे जो ये क्राइम्स करने वाले ऐसे लोग हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे कभी। इस्लाम तो फिर अच्छी तरह उनकी खबर लेता है। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू, सिवाय उन लोगों के जो तौबा कर लें इससे पहले कि तुम कुदरत पा जाओ उन पर, यानी इससे पहले कि वो पकड़े जाएं। अगर कोई लोग ऐसे हैं जो तौबा कर लें, फॉर एग्जांपल है कि कोई डाके डालता था उसने तौबा कर ली, तो उसके बाद वो उनके माल लौटाएगा और फिर तौबा, ये नहीं कि माल नहीं लौटाने, क्योंकि हकूकुल इबाद अपनी जगह है, तो फिर फालमु अल्लाह गफूर रहीम, तो जान लो कि अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। यानी तौबा का दरवाजा ऐसे मुजरिमों के लिए भी खुला हुआ है, लेकिन ये नहीं कि जब पकड़ लिए जाओ तो अब तौबा 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 तौबा, नहीं, पहले, इससे पहले कि वो तुम गालिब आ जाओ उन पे, यानी इससे पहले कि उनको अरेस्ट किया जाए, इससे पहले कि उनके ऊपर हाथ डाल दिया जाए, उससे पहले वो तौबा कर। ये क्यों कहा गया? ये मुजरिम को इंसेंटिव देने के लिए कि तुम बाज आ जाओ, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। क्योंकि जो मुजरिम होता है ना, वो एक कत्ल करेगा या दो तीन कत्ल कर लिए ना, उसके बाद वो ये सोचता है कि अब मेरे पास तो वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है, अब बस मैं इसी रास्ते पे हूं, अब तो मेरी जिंदगी गंदी हो ही गई, अब मैंने क्या जाना है, अब मैं तो कभी साफ नहीं हो सकता, मेरे हाथों पे खून लग गया, मैंने कोई ऐसा गलत काम कर दिया, मैंने कई डाके डाल दिए। और आपको ये भी बता दूं कि जो ये गैंग्स की बात हो रही ना, या ये जो भी गैंग आपको मैंने बताया, आपको अल्लादीना से पता चलता है कि ये गैंग्स की बात है, उसके अंदर से अगर कोई एक है जिसने कत्ल किया, ट्रिगर एक ने दबाया, ये नहीं होगा कि बाकी सजा से बच जाए। वो जब गैंग पकड़ा जाएगा तो सबको सजा मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि नहीं, छीना इसने था पर्स और उसने तो सिर्फ गाड़ी चलाई थी, नहीं, वो जब गैंग आप होके जाएंगे तो सबके लिए ये सजा है। तो अब वो मुजरिम कभी कभी ऐसा होता है वो क्राइम पे क्राइम इसलिए करते जा रहे हैं जाते हैं, और वो क्यों नहीं वहां से निकल पाते, क्योंकि वो कहते हैं कि अब हमारे लिए वापसी का रास्ता बंद हो चुका है, तो अल्लाह ताला ने वो रास्ता खुला रखा हुआ है कि अगर ये भी पकड़े जाने से पहले, लेकिन अगर ये भी अल्लाह ताला के आगे तौबा कर लें, अपनी जिंदगी को संवार लें, वापस सही हो जाए, तो अल्लाह इनको माफ कर सकता है, अल्लाह गफूर रहीम है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने देखिए चैनल क्लोज नहीं किया मुजरिमों के साथ भी, चैनल ओपन रखा है। ये है होती है अल्लाह की रहमत, ये है वो गफूर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों डरो अल्लाह से, वबतगू इलैहिल वसीला और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। अब ये आयत को लोगों ने बहुत ही गलत रंग दे दिया और कहा कि देखो कुरान के अंदर लिखा हुआ है अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो, इसका मतलब है कि जैसे देखें जैसे हम जाते हैं किसी ऑफिस में तो हम वो बाहर बैठे हुए चौकीदार को पहले कुछ रिश्वत देते हैं या उससे पहले कोई बातचीत करते हैं कि साहब के पास जाके मेरी बात पहुंचाओ, फिर वो जाता है, या फिर हम किसी उसके बॉस का जो बड़ा आदमी है उसका जो वजीर है जो उसका सेक्रेटरी है उसके पास जाते हैं, उसके थ्रू हम आगे जाते हैं ना, तो वो कहते हैं जी देखें किसी जगह भी चढ़ने के लिए भी तो सीढ़ी चाहिए होती है ना, तो अल्लाह के लिए भी वसीला चाहिए, हम पहले वसीला पकड़ेंगे, यानी कोई बुजुर्ग को जो फौतशुदा हो गए हैं कोई कोई फलाना फलां उसको पकड़ेंगे तो अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, आप खुद तो नहीं अल्लाह तक पहुंच सकते, आपको तो ये सीढ़ी चाहिए। तो ये नादान ये नहीं जानते कि अल्लाह की बात उस इंसान की तरह की नहीं है जो तो वो अंदर कमरे में बैठा, उसको तो ये भी नहीं पता बाहर आया कौन है, कौन है सवाली, किसका क्या मसला है, ये तुम अल्लाह की बात कर रहे हो, वो वसीला जो तुम समझ रहे हो इसको और इस आयत को वो कोट करते हैं कि देखो कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह के लिए वसीला तलाश करो, वो वसीले का मतलब तो समझ लो, वसीले का मतलब देखें उर्दू में जो है ना वो अरबिक में नहीं है, उर्दू अरबिक में वसीले का मतलब डिफरेंट है, उर्दू में तो ठीक है वसीला जरिया को कहते हैं, जरिया पकड़ लो जी उसके तक का जरिया दे दो, लेकिन अरबिक में वसीले का लफ्ज मुख्तलिफ है, अरबिक में वसीला कहते हैं तवस्सुल से है, तकर्रुब है इसका मान करीब होना, समझ आई, करीब होना, यही लफ्ज दो मकामात पे आया कुरान पाक में, एक यहां पे आया है और एक सूरह इसरा में आया था 56 कालेबन आया था, आप देख सकते हैं कि जिनको तुम पुकारते हो वो तो खुद वसीले की तलाश में है, यानी वो तो खुद अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, उनमें से कौन ज्यादा करीब है अल्लाह के और वो अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखे में, तो वसीले का मतलब है अल्लाह के कुर्ब का जरिया जो बने चीज वो तलाश करो, ठीक है, और इसका माना कुर्ब भी है कि अल्लाह के कुर्ब को तलाश करो या वो चीजें जो अल्लाह के करीब करती हैं उनको तलाश करो, वो सोर्स। अब इसके अंदर ये कह देना कि वो इंसान जिनको हम जा जाके मांगे उनसे और वो हमारा वसीला बनेंगे वो अल्लाह तक पहुंचाएंगे, हमारी आपके आगे आपकी अल्लाह के आगे, ये कहां से मीनिंग है, तो बात है ना कि अपनी मनमानी तावीलें करते रहना। तो ये यहाँ पे इस ये वाले माने को समझना जरूरी है कि यहाँ पे वसीला किस चीज को कहा जा रहा है, और अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, पहले हमें ये देखना चाहिए कि देखिए पीछे बात क्या हो रही है और आगे बात क्या हो रही है, ये बीच में बात आई है, पहले बात आई है ये मुहारबे की, आखिर में बात आई है इसके बाद 38 आए चोरी की सजा की, बीच में क्या है ये आ गया कि अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो, यानी जब इंसान अब तौबा की बात आई तो अब अल्लाह से करीब होने की कोशिश में लगो, अब इस चीज को छोड़ दो जराइम को, और तमाम मोमिनों को ही कहा गया अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और सबको जरूरत है कि वो अल्लाह से कुर्ब की तलाश में रहे। तो अब ये क्या चीज है कि जो जो हमें अल्लाह से करीब कर दे, वो तमाम नेक आमाल इसके अंदर आ जाते हैं जिनके जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो सकता है ना, जिनसे हम अल्लाह के करीब हो सकते हैं। तो वाव सीन लाम का मतलब होता है मिलना या जुड़ना, ठीक है, जो वाव स्वाद का होता है ना वही ऑलमोस्ट वही वाव सीन वाले का भी होता है, वसल एक स्वाद के साथ भी लिखते हैं ना वो। तो इब्ने जरीर ने हजरत कतादा से इस आयत की तफसीर में ये लिखा है कि यानी अल्लाह ताला की तरफ तकर्रुब हासिल करो उसकी फरमा बरदारी और उसकी रजामंदी के काम करके, बात क्लियर हो गई, यानी किस तरह से फिर तकर्रुब तलाश करें, कैसे अल्लाह से करीब हो, कैसे वसीला तलाश करें, ईमान और अमले साले से, और दूसरी बात हमें पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वसीला एक आला दर्जा है जन्नत का जिसके ऊपर कोई दर्जा नहीं है और वो किसी एक को ही मिलना है, तो तुम अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो दर्जा अल्लाह ताला मुझे अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मिलना है, लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे फरमाया कि जब मुअज्जिन अजान दे तो तुम भी वही कलिमात कहो जो मुअज्जिन कहता है, उसके बाद फिर मेरे ऊपर दरूद भेजो, और उसके बाद क्या करो ये वसीला की दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़ी दावत तामा व सलात कायमा आती मुहम्मद अनिल वसीला तवल फजीला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम इस दुआ के अंदर वसीला मांगते हैं, ठीक है? तो वो ये वसीला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दुआ की जाए, ठीक है? तो एक ये बात हो गई कि वसीला तलाश करो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दुआ की, अपने लिए भी कुर्ब अल्लाह ताला का मांगो, और एक वसीला मतलब वो मकाम भी है जिसकी दुआ हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करते हैं। अब वसीला को पाने के, यानी अल्लाह के कुर्ब को पाने के जरिए क्या है? कुरान पाक है, अल्लाह ताला की इताअत के और काम है, और इसी तरह हमें कुछ काम हदीस से पता चलते हैं, जैसे कि अस्माए हुस्ना के जरिए अल्लाह से दुआएं करना, इससे इंसान अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह को उसके अस्माए हुस्ना से पुकारें। जैसे कि अगर आपको शिफा चाहिए तो या शाफी, अगर आपको तवंगरी चाहिए या गनी, अगर आपको रिस्क चाहिए या रज़ाकू, अगर आपको मसलन अल्लाह की रहमत चाहिए या रहमानु या रहीम, अगर आप चाहते हैं अल्लाह मेरे गुनाहों की पर्दापोशी करे इस दुनिया में भी और आखरत में भी, या सत्तारुल उयूब, तो इस तरह से करके अल्लाह से कुर्ब हासिल किया जाता है। तो दूसरी ये आप देखें, अल्लाह तला के आगे सजदे करना वस्जुद वक्तरिब, नेकी के कामों में से है, तो कहा गया है कुरान के अंदर ही कहा गया है सजदा करो और करीब हो जाओ अल्लाह से। तो नवाफिल की अदायगी करना, नेक आमाल करना, और इसी तरह नेक लोगों से दुआएं करने के लिए कहना, ये भी अल्लाह के कुर्ब का जरिया बन सकता है। जैसे कि एक अमल है कि हजरत उमर जब कहत साली हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक मौजूद था, लेकिन वो आपके चचा हजरत अब्बास को लेकर बारिश की दुआ करने के लिए निकले थे, और फरमाते हैं कि या अल्लाह हम पहले तेरे नबी जब वो थे तो हमारे अंदर, तो हम उनसे दुआ कराते थे, अल्लाह वो नहीं है तो हम उनके चचा को लेकर आए। यानी आप किसी नेक इंसान से कह सकते हैं कि वो आपके लिए दुआ करे, ये भी अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया। और एक और वसीला कर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना, ये भी वसीला है। तो ये भी आप तलाश करो, यानी वसीला तलाश करो, यानी ये सारे जरिए हैं ना कुर्ब के, इनके थ्रू आप अल्लाह के करीब हो सकते हैं। तो ये मैं आपको वो बात बता रही हूँ। अब इसका भी हमें कैसे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में इतना ज्यादा ताकीद फरमाई है, कि जब एक सहाबी ने कहा था कि मैं रात में कितना दुरूद पढ़ूं, इतना पढ़ूं इतना पढ़ूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गए और ज्यादा कर लो तो बेहतर है, और ज्यादा, ताकि उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह मैं अगर सारा ही दुरूद ही पढ़ता हूँ, तो आपने फरमाया तो फिर तो तुम्हारी सारी जो भी तुम्हारी मुश्किल है अल्लाह दूर कर देगा। और आपको पता है दुरूद की तो इतनी बरकतें हैं, 10 रहमतें मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। तो बजाय इसके कि हम ये जो हमने अपनी तरफ से बना लिया कि दुआ करनी है, तो हम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह मुझे दे दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह से कुछ करके दुआएं करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो हमने लेना है, लेकिन उस सूरत में जो आपने सिखाई है, और वो किस तरह के दुरूद, दुरूद पढ़ के आपका नाम लें, क्योंकि दुरूद के बगैर जो है वो दुआ रद्द हो जाती है, दुआ रुक जाती है। तो आप दुरूद, इसीलिए कहा जाता है ना अव्वल आखिर दुरूद पढ़ना, तो जब आप दुरूद पढ़ेंगे तो दुरूद तो कबूल होगा ही, तो बीच में जो दुआ है वो भी इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी। तो ये भी अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया। वह जाहिदू फी सबीली, और जिहाद करो उसके रास्ते में। जाहिदू क्या है? जाहिदू एक दूसरे के मुकाबले में, यानी अलिफ जब आ जाता है ना तो एक दूसरे के मुकाबले में, यानी क्या मतलब है कि सिर्फ एक तरफ की कोशिश नहीं होगी। मुजाहिदे में क्या है कि एक तरफ इवन फोर्सेस हैं और एक तरफ आप हैं। अब चाहे वो शैतान है, चाहे वो आपका अपना नफ्स है, जैसे हमने अभी पढ़ा, माहौल है, घर वाले हैं, अब इनके लिए तलवारें लेके नहीं आपने खड़े हो जाना, या रस्मों रिवाज है, इनका जो मुकाबला करना है ना, ये मुजाहिदा है। इनके मुकाबले में अल्लाह की फरमाबरदारी पे डटे रहना, ये है मुजाहिदा। समझ आई बात? यानी उनके आगे हार नहीं मान लेनी कि मेरी औलाद है या मेरा अपना नफ्स है या आप क्या करें माहौल ही ऐसा है, तो अपनी हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएं कि हम क्या करें, हम तो नहीं इनसे लड़ सकते, हम तो नहीं इनसे लड़ से मतलब ये नहीं है कि आपको तलवारें लेके खड़े जाएं या जुबानी लड़ना शुरू करते हैं, मतलब उनके मुकाबले में अल्लाह की इताअत पे जमना कि हमसे तो नहीं होता अब हम क्या करें, ये नहीं, ये है जिहाद कि आप अल्लाह की रजा के जो काम है उनके ऊपर जम जाएं और कोई आपको हिला ना सके, और जो भी रुकावट बने इस रास्ते में आपको अमल से रोकने में उसके साथ मुकाबला करें, उसको ओवरकम करें, ना कि उसके आगे ढह जाएं। कुछ ने भी कुछ कह दिया तो फौरन ही हम तो हार मानने को तैयार खड़े होते हैं, फलाने ने ये बात सुना दी, हाय उसने मुझे ये कह दिया, हाय उसने मुझे टेढ़ी नजर से देख लिया, तो ये कौन सा मुजाहिदा हम कर रहे हैं। ये है फिर जिहाद के होता है अल्टीमेट अटमोस्ट कोशिश, आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना कि आप मसलन आपको इस तरह एग्जाम्पल देती हूँ, आप एक रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, अब उस रास्ते में कोई खड़ा हो गया आके तो आप क्या करेंगे, आप उसको समझाएंगे बुझाएंगे, आप उसको रास्ते से हटाएंगे कि आप चल सके इस रास्ते, यही है जिहाद कि अब इसके अंदर चाहे जो भी कोशिश करनी पड़े लेकिन आपने रास्ता नहीं छोड़ना, आपने इस रास्ते को पे हिम्मत नहीं हारनी, अब वो फोर्स कितनी भी, आप वो चाहे घर वाले हैं, अब वो चाहे कोई भी माशरे के और लोग हैं, चाहे आपकी अपना ही नफ्स है, कोई भी है, आपने इसको रुकावट नहीं बनने देना, तब है फलाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। और ये जो फलाह है ना, फलाह का लफ्ज, ये वो कामयाबी है जो बड़ी मेहनत के बाद मिले, बड़ी सख्त मेहनत के बाद जो कामयाबी मिलती है उसको फलाह कहते हैं, और फलाह कहते हैं किसान को, वो भी मेहनत करता है तब उसको मिलता है ना नतीजा, तो इसी लफ्ज के अंदर माना पता चल रहा है कि अगर कामयाबी लेनी है ना तो सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, तो तुम अगर कामयाब होना चाहते हो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, जो कि मैं बहुत दफा आपको बता चुकी हूँ कि तकवा क्या है, उसकी तरफ वसीला तलाश करो, यानी वो सारे जो जरिए अल्लाह से करीब करने वाले हैं उनकी तलाश करो, उनके लिए कोशिश करो, और जाहिदु फी सबीली, अल्लाह के रास्ते में कोशिश करो। इन लदीन कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लव अन्न लहुम, अगर वो उनके लिए बेशक मा फिल अर्दी, जो कुछ भी जमीन में है, वह मिथलहू, और इसकी माने यानी उतना ही, और यानी एक जमीन तो ये है ना, और जो कुछ इसमें है सोना चांदी जो खजाने इसके हैं सब कुछ, और इसकी जैसी और भी जमीन हो माहू इसके साथ, लियफ्तदू बिही मिन अदाबी यौमिल कियामती, के वो फिदिये में दे दे, एज रैंसम दे दे अजाब से बचने के लिए, कयामत के दिन के अजाब से बचने के लिए, मां तो कुबिला मिनहुम, नहीं कबूल किया जाएगा उनसे। अल्लाह हू अकबर, इतना अव्वल तो किसी के पास ना इस दुनिया में है तो ना आखरत में होगा, कौन है जिसके पास पूरी जमीन का जो मालिक हो और उसके खजानों का भी, और कहां ये कि एक ये जमीन और एक ऐसी जमीन हो, लेकिन चलो माना कि किसी के पास हो भी जाए, कोई इतना रिच हो कि जिसके पास हो, और उसको कयामत के दिन अजाब हो तो वो उस सारा कुछ को भी देना चाहेगा तो उससे कबूल नहीं किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जहन्नमी को लाया जाएगा, फिर उससे पूछा जाएगा, हे इब्ने आदम कहो तुम्हारी जगह कैसी है, वो कहेगा बदतरीन जगह है, सख्त तरीन जगह है, उससे पूछा जाएगा इससे छूटने के लिए आजादी के लिए तुम क्या खर्च करने पर राजी हो, वो कहेगा सारी जमीन भर का सोना दे के भी यहां से छूटूं तो भी सस्ता छूट गया, अल्लाह ताला फरमाएगा झूठा है तू, मैंने तो तुझसे इसे बहुत कम मांगा था, यानी अल्लाह ताला ने क्या मांगा, तौहीद, अल्लाह के अहकामात भी चलना, वो भी 50 60 70 साल की जिंदगी में, लेकिन तूने वो भी नहीं किया, फिर हुक्म दिया जाएगा उसको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, ये मुस्लिम की रिवायत है, यानी इंसान से इस दुनिया में बहुत कम का अल्लाह ने मुतालबा किया, फिर इंसान वो भी पूरा नहीं कर सका, अब वहां जाके कहेगा सारा कुछ मेरे से ले लो लेकिन मुझे छोड़, यहां देखिए सोचे आज अगर एक एक सोने का सेट है ना किसी के पास, वो भी उसके लिए देना मुश्किल है, कि मैं कोई कहे कि अल्लाह के रास्ते में दे दो, हाय फिर जान निकल जाती कि हाय अल्लाह मेरे पास तो ये है, हाय मैंने तो बच्ची की शादी के लिए रखा हुआ है, हाय मैंने तो ऐसे, तो इंसान नहीं देता, लेकिन वहां पे सोचे इतना कुछ भी कहेगा कि मेरे से ले लो लेकिन मेरी जान छोड़ दो, मुझे यहां से बचा दो, मुझे यहां से निकाल दो, अल्लाह अकबर। और आज चांस है वो जो वहां जाके इतना कुछ दे के भी जान नहीं छूटेगी। आज इंसान अपनी आंखों से दो आंसू भी बहा लेना तो आग की वादियों को बुझा देने के लिए वो दो आंसू काफी। जहन्नुम की आग को बुझाने के लिए दो आंसू काफी। उस दिन जो इतना कुछ देने पे भी ठंडी नहीं पड़ेगी। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और युरीदूना यखरुजू मिनन नार, वो तो चाहेंगे कि वो आग से निकलें, वो तो कोशिश करेंगे कि वो आग से निकल आए। अरे वो पुकारेंगे कभी पुकार पुकार के, कितना अरसा पुकारते रहेंगे, अल्लाह ताला को पुकारेंगे, उस जहन्नुम के दारोगे को पुकारेंगे, हमें आजाद कर दो, हमें निकाल दो यहाँ से। अब ये तक कहेंगे कि हमें चलो निकालो ना, हमें ब्रेक ही दे दो, हमें हल्का ही कर दो, एक दिन के लिए हमारे लिए हल्का कर दो आजाद। अल्लाह अकबर। तो लेकिन वमा हम भी खारिजी ना मिना, लेकिन वो उसमें से निकलने वाले नहीं, क्योंकि ये काफिर हैं, काफिर हैं। उस दिन कहेंगे ए हमारे रब, रब्बा ना कहेंगे उस दिन। अब मान भी लिया तो क्या फायदा, क्योंकि वो दारुल अमल नहीं है, दारुल जजा है। वहां पे खुदा को भी मान लिया, फरिश्तों को भी मान लिया, कयामत के दिन वो, अब क्या फायदा मानने का। अब यहाँ पे अमल थोड़ी काम आएगा, वहां पे नहीं अमल काम आना। अब इतना सोना कोई दे दे, थोड़ा सा ही दे दे तो कितनी बड़ी बात है, इतना भी उस दिन देगा तो कुछ फायदा नहीं। वलहुम अदाबुन मुकीम, और उनके लिए अजाब है जो दाइमी है, कायम रहने वाला है, निकलेंगे नहीं उससे। क्योंकि वहां की आग वो नहीं है जो जल जल के हल्की हो जाए, बल्कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि वो अजाब है जो बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। अजाब भी एक होता है ना, कि एक इंसान कोई सोचते हैं कि शायद उस अजाब में रहने से लोग पता नहीं उसके आदी हो जाए, नहीं, वरना नजीदकुम इल्ला अजाबा, उनके लिए ज्यादा कोई और चीज नहीं होगी मगर सिर्फ अजाब, बढ़ता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, उसकी तकलीफ भी बढ़ती जाएगी। वसारे को वसारे का तो फकत हुई दिया हूं। अब देखें ये इतनी बातें बता के ना फिर से दोबारा वो सजा की बात बताई गई, चोर मर्द हो या औरत, कोई रायत नहीं है इसमें औरत की कि ओ बेचारी औरत, ये तो औरत जात है, इसको तो छोड़ दो, इस बेचारी का क्या कसूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुकदमा आया था ना, जिसमें कि किसी बड़े खानदान की औरत ने चोरी की थी, तो सिफारिशें भी उसके खानदान वाले करवाना चाह रहे थे कि इसको हाथ ना काटा जाए बस। तो नहीं, कहा गया जो चोर मर्द है, अब ये कौन सी सजा है, हदूद में से है, हद है ये, फकता वही दिया हूँ, बस काट दो उन दोनों के हाथ, मतलब ये नहीं कि दोनों हाथ काट दो, इन दोनों के हाथ कटेंगे, यानी चोर मर्द का हो, मर्द ने चोरी की हो या औरत ने चोरी की, हाथ काटो। ये जजा अम्बीमा का सजा, ये उन बदला है, उनकी कमाई का ही बदला है, नकाल अमीन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सजा है। वल्लाहु अजीजुल हकीम, अल्लाह ताला जबरदस्त है, हिकमत वाला है। और वाकई जब ये सजा नाफिज की जाती है ना सऊदी अरब में, आप कभी कभी देखेंगे लोगों को किसी का हाथ कटा होता है, तो वहां पे आप देखें चोरी क्लोज टू यानी जीरो है, सोने की दुकानें कितनी भरी भी खुली भी छोड़ के भी चले जाते हैं तो कोई भी नहीं चोरी करता। और आप देख लें बाकी मुल्कों के अंदर जहां पे ऐसी कोई सजाएं नहीं है, जिस वक्त कोई लाइट चली जाए, कोई इस तरह का कुछ हो जाए, लोग स्टोर लूट लेते हैं, क्या क्या करते हैं। तो इस्लाम में ये सजा क्यों रखी गई, ताकि कभी कोई चोर चोर यानी कोई चोरी का सोचे भी ना। और देखिए सजाएं कितनी रेलेवेंट है ना, जुर्म के मुताबिक है। हाथ से इंसान किसी की चीज उठाता है तो वो हाथ ही काट दो जिसने ये जुर्रत की कि वो आगे बढ़े किसी की चीज उठाने की। और चोरी होती क्या है, किसी का हिफाजत से पड़ा हुआ कोई माल है उसको खुफिया तौर पे उसको उठा लेना। पहले जो बात आई थी ना, जो मैंने आपको डाके की बात बताई थी, वो डिफरेंट है, वो चोरी नहीं है, वो तो गन पॉइंट पे घरों में घुस के लोगों को डरा धमका के उनको लूट मार करके लेके जा रहे हैं, वो डिफरेंट चीज है। चोरी जो होती है वो खुफिया होती है। मुझे लगता है आजकल चोरी तो कम है, ज्यादा तो वो ही है, डकैतियां हैं। चोरियां तो अब कोई इतनी लोग दलेर हो गए कि खुफिया तौर पर कोई नहीं आता, वो तो धड़ल्ले से आते हैं। तो ये जो खुफिया जैसे रात को सोए हुए हैं या अपने घर पे नहीं है, तो उनके पीछे से उनका माल चोरी करना, ये होती है चोरी, इसके ऊपर है हाथ काटने की सजा। ठीक है, और इसके अंदर ये जरूरी नहीं कि कुछ ने अपना माल छुपा के नहीं रखा होता, सामने रखा होता, इसलिए उठाना ठीक है। मसलन किसी स्टोर में गए, वहां पे सामने चीजें पड़ी हुई है, लॉकर में तो नहीं पड़ी हुई, तो अगर वहां से कोई चीज उठा ली तो वो ठीक है, नहीं वो भी चोरी ही है। लेकिन कितनी चोरी पे हाथ कटेगा ये अब सवाल ही है, हर चोरी पे नहीं, कितनी। लेकिन ये मतलब नहीं कि इससे कम चोरी हो जितना मैं आपको बताने लगी तो वो कोई चोरी ही नहीं है, नहीं वो उस पर ताजीर होगी। मुझे ही बात आप तो समझ आ रही है ना, हद किस पे होगी, वो इतने पे जितना मैं आपको बता रही हूं, 3 दिरहम या 1/4 दीनार, ये आता है हजरत आयशा की रिवायत से भी पता चलता है। अब ये कितना होता है तो ये आप देख लें कि ये तकरीबन आज के हिसाब से 1 ग्राम सोना बनता है, 1 ग्राम, 1 ग्राम सोना की कीमत देख लें। तो इतना अगर किसी ने चोरी की होगी तो उसके ऊपर उसका हाथ काटा जाएगा। मगर इसमें ये एक एक्सेप्शन भी है कि कोई अगर भूखा इंसान है ना और वो किसी का खाना चुरा के खा लेता है तो उसके ऊपर उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। ये मतलब नहीं कि कोई बेचारा गरीब है, उसने इतने दिन से खाना नहीं खाया हुआ, उसने किसी का खाना देख लिया तो उसको वो उसने खा लिया, अब ये कोई चोरी ही नहीं है, अब तो इसको इसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। देखिए उसको फिर जज सवाल देगा, जो भी देख के हालात वाकियात के, भाई इतने दिन इसको मसलन जेल में कर दिया जाए या ये किया जाए, जो भी है, लेकिन हद वाली सजा नहीं नाफिज की जाएगी, ठीक है। और हद की सजा के अंदर ये नहीं देखा जाएगा कि मर्द है या औरत है, इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। यद कहां तक होता है, ये रिस्ट, ये वरना ये नहीं उठा के कोहनी तक काट दे किसी का हाथ। और इसको फकताऊ नहीं कहा गया, फकत्ता ये नहीं कहा गया। अब इसके लिए देखें आप, वो वाली संगीनी नहीं है जो पहली वाली बात के लिए, और वल्लाहु अजीजुन हकीम, अल्लाह हिकमत वाला भी है वालिद भी है। कोई ये जो समझते हैं ना कि भाई ये अल्लाह ने सजाएं क्यों रखी, ऐसे क्यों किया, तो इसमें हिकमत है, बजाय इसके कि लोगों को चोरी करें तो उनको जेल के अंदर रख के और उसके बाद उनको भी खाना दें और उनको प्रोवाइड करें रेजिडेंस, तो इससे बेहतर है उनको ये सजा दे के और उनको मेन स्ट्रीम में दोबारा शामिल किया जाए। फमन ताबा मिन बादी जुल्मिही व असलह, अब देखें यहाँ पे भी कितनी जबरदस्त बात है कि जो कोई तौबा कर ले इसके बाद भी, कि उसको चोरी की सजा मिल गई, अब यहाँ पे तो हद नाफिज हो गई उसके ऊपर इस जुल्म के बाद, तो अभी एक अल्लाह के हाँ तो है ना, लेकिन वो इसलाह कर ले अपने आप को, अब इसके बाद उसने अपने आप को स्ट्रेट कर लिया, अब कभी भी वो ऐसी चीज से तोबा कर ली उसने कि कभी नहीं करेगा, क्योंकि कई दफा ऐसे होता है कि मुजरिमों को सजा भी मिल जाती है फिर उसके बाद भी वो दलेर रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि अच्छा नहीं मैंने अब कभी नहीं ये करना। तो अगर किसी ने तोबा कर ली है इसके बाद, इन्नल्लाह यतुबु अलैह, तो अल्लाह ताला मेहरबान होता है उस पर, इन अल्लाह गफूर रहीम, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह गफूर रहीम है। आप बड़े कई लोगों का आप सुनते हैं ना कि उन्होंने इस तरह से इस कुरान की आयत सुनी और उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई, पहले डाकू थे, डकैतियां करते थे, और उसके बाद कैसे वो कितने बड़े अल्लाह के वली बन गए। तो इस तरह है, एक और बिशरहानी के बारे में आता है, बहुत शराब पीने वाले थे, नहीं उनका वाकया है या किसी और का, नहीं मैं गलती कर रही हूँ शायद, ये काट दें, उनका किसी कोई और नाम है, मुझे भूल गया है नाम, कि वो कितनी शराब पीते थे लेकिन उसके बाद फिर तौबा कर ली और उसके बाद कितने बड़े अल्लाह के वली बन गए। तो बहुत सारे ऐसे वाकयात आते हैं, अगर ये दरवाजा बंद कर दिया जाए ना, कोई सेकेंड चांस ही इनको ना दिया जाए, तो ये कभी लोग बाज ना आ सके, या ये लोग इतना ज्यादा अपनी गिल्ट में चले जाएं कि अपने आप को खत्म कर लेंगे, या कभी भी वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकेंगे, जब उनको पता होता है कि अल्लाह है जो गफूर रहीम है, और अगर मैं तौबा करूंगा तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा, मेरे पास चांस है, तो फिर वो अल्लाह ताला की तरफ पलटते हैं, तौबा करते हैं, इन गुनाहों से बाज आ जाते हैं। माशरा चाहे एक्सेप्ट करे ना करे ऐसे लोगों को, माशरा चाहे उनको मुजरिम कहता रहे, माशरा चाहे उनको लान तान ही करता रहे, लेकिन अगर वो इसलाह कर लेते हैं तो अल्लाह ताला के पास उनके लिए गुंजाइश है, अल्लाह के दरवाजे उनके लिए भी खुले, ये होती है रहमत। इसीलिए इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं ना कि मोमिन जब गुनाह करता है ना तो उसकी तलाफी की उसके पास 10 सूरतें हैं। कैसे 10 सूरतें हैं? तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, नेकी कर ले तो उससे उसका गुनाह मिट जाए, कोई मुसलमान उसके लिए दुआए मगफिरत कर दे चाहे उसके मरने के बाद ही करे। पांचवी चीज, कोई मुसलमान उसको सवाब पहुंचाने की नीयत से सदका कर दे। नंबर सिक्स, अल्लाह ताला दुनिया में उसको किसी आजमाइश में डाल के उसके गुनाह का कफारा कर दे। मसलन कोई लोग कभी तौबा कर लेते हैं लेकिन, या बाज आ जाते हैं और अल्लाह से माफी मांग लेते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला उनको किसी आजमाइश में डालता है ताकि उनका गुनाह मिटा दे उनके ऊपर से, तो उनका कफारा कर दिया अल्लाह ने दुनिया में। नंबर सेवन, फिर ये कि कब्र उनको झंझोड़े और फिर वहां पे उन उसका गुनाह धुले। नंबर एट, ये कि कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको उसकी जो जो पेशी है वहां पे, जो उसके पूछ गिछ है वहां पे, इन्वेस्टिगेशन जो उसकी हिसाब किताब है, उससे उसके गुनाह माफ कर दे। या फिर नंबर नाइन, अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम की शिफात से उसको माफ कर दे। या फिर नंबर टेन, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको बगैर हिसाब किताब के बख्श दे। ये 10 चीजें हो सकती हैं किसी के लिए, कितने चांसेस हैं। लेकिन इमाम इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि जिस बदनसीब को इनमें से कोई एक भी ना मिले तो फिर वो फिर अपने आप को ही मलामत करे, फिर और किस होगा, फिर इसके बावजूद भी कोई जहन्नुम में चला जाता तो फिर क्या हो? इंसान कोई एक भी नहीं चांस इनमें से ले सकता। क्या अलम तालम अन्न अल्लाह लहु मुल्कु समावाति वल अर्द, क्या तुम्हें नहीं पता अल्लाह ताला के लिए ही है बादशाहत, लिए ही है। क्यों आया? लहू, आपको मैंने बताया था जो चीज बाद में आनी हो अगर वो पहले आ जाए, जैसे असल में था मुल्कु समावाती वल अर्दी लहू, लेकिन जब लहू पहले आ गया तो इसके अंदर फिर ताकीद भी होती है, एक हसर का भी माना हो जाता है कि उसके लिए ही है जो भी है बादशाहत आसमान और जमीन की, जो आजिब मैयशा हो या फिर उले मैयशा, वो जिसको चाहे अजाब दे जिसको चाहे बख्श दे। यानी इसका मतलब है कि तुम ये सोचो कि अगर इनको इस तरह की सजाएं क्यों दी जा रही है और इसको माफ कौन करेगी, कि क्यों इसको माफ किया जा रहा है, इनको तो कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए, ये तो ऐसे हैं, तो तुम नहीं जाजो। अल्लाह जिसको चाहे अजाब दे जिसको चाहे माफ कर दे। और ये हमारे तमाम उन सवालों के लिए, उनका क्या बनेगा, उनके साथ क्यों ऐसा होगा, उनको क्यों ये दिया जाए, नहीं। अब यहां पे जितनी सजाएं दी गई, अल्लाह चाहे तो ये आखरत में इनको अजाब दे, अल्लाह ताला चाहे तो किसी ने पता नहीं कितनी सच्ची तौबा की हो, अल्लाह उसको माफ कर दे, इख्तियार अल्लाह का है। और फिर जब इंसान अपनी अकल के घोड़े दौड़ाता है ना, अपनी लॉजिक्स तलाश करता है, अपने मंतक निकालता है कि ये सजा तो बड़ी सख्त लग रही है मुझे, ये तो देखें ये फिर हम लोगों को कैसे बताएंगे नॉन मुस्लिम्स को, तुम तो ये तो कोई मुहज्जब सजा ही नहीं लग रहे, ये तो बड़ी बस जालिमाना सी लग रही है, बड़ी वहशियाना सी लग रही है, ये तो सही नहीं है, तो ये तुम अपनी अक्ल को ना दौड़ाओ। अलम तालम अन्न अल्लाह लहु मुल्कु समावाति वल अर्द, कितना जबरदस्त जवाब है। और ये जिसको जो जो जुर्म करता है उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए, हाथ कटना चाहिए, या उसको ये मुहारबे की किसी को सजा मिल रही है तो उसको कैसी सजा मिलनी चाहिए, ये सजाएं अल्लाह ने बताई हैं। और वो ही ज्यादा बेहतर जानता है कि किसको सजा मिले या कितनी मिले, किस जुर्म पे किसको मिलनी चाहिए। वल्लाहु यालमु वा अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। लिहाजा इसके अंदर ना बहुत ज्यादा ऐसी बातें करना, ये क्यों ऐसी सजाएं हैं, ये क्यों ऐसी है, ये नहीं होना चाहिए। पता नहीं है कि अल्लाह ताला अल हकीम है, अल अजीज है, उसके पास अथॉरिटी है, पावर है, वो जो मर्जी चाहे सजाएं इसके लिए बताए, और वो सारी सजाएं हिकमत पे मबनी है। हम, मैं और आप नहीं उस तरह से सोच सकते कि क्या चीज किस किस जुर्म के लिए बेहतर सजा है। वल्लाहु आला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला। ये तो एक तर्जुमा है, लेकिन असल में इसका पता है क्या तर्जुमा है? अल्लाह ताला पूरी तरह कुदरत रखने वाला है हर चीज पर। अब ये पूरी तरह मैंने क्यों कहा और कहां से आया पूरी तरह? असल में कदीर जो है ना फाइल के वजन पे है, जो मुबालगे का सीगा है, इसके अंदर बहुत एग्जेजरेशन होती है, जैसे रहीम, बसीर, समीर, इसी तरह कदीर, इसमें दवाम भी होता है, हमेशगी भी होती है। एक है कादिर भी तो है, वो भी तो कुदरत रखने वाला, एक कदीर है, एक रहीम भी तो है और एक रहीम है, रहीम लोग नाम भी रखते हैं, लेकिन जो रहीम है, जो कदीर है, उसमें दवाम है। समझ आई बात? मुबालगा है इसके अंदर। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए ये पढ़ना, और अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझना, इन पे अमल करना की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير